ओम शांति। तो सबसे पहले तो मैं जो हमारे भाई बहन पीछे बैठे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप आगे कुर्सी खाली है, आगे आके आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जो भी भाई बहन पीछे बैठे हैं आगे आ जाए। आज इस सेमिनार का एक विशेष सत्र में हम बैठे हैं। आज का ये सत्र जो इस सेमिनार में हम सभी एक लक्ष्य लेके चले हैं कि हम इस भारत को स्वच्छ स्वस्थ और स्वर्णिम भारत बनाएंगे, तो स्वयं परमात्मा ने भी इस भारत को स्वच्छ स्वस्थ बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा इस विद्यालय की स्थापना की और इस विद्यालय की स्थापना के साथ साथ उन युवा भाई बहनों को निमित्त बनाया जो आज इस यज्ञ के पिलर है। और ऐसे यज्ञ की हिस्ट्री सुनाने के लिए भी आज ऐसे विशेष रतन हमारे बीच में हैं। आप सबको उनका परिचय तो है ही है, लेकिन आज के इस सत्र में केवल आपको सुनना नहीं है, लेकिन सुनने के साथ साथ अपने दिव्य नेत्र द्वारा, दिव्य बुद्धि द्वारा ऐसी अनुभूति करनी है कि जैसे आज जो परमात्मा का जो विशाल यज्ञ है, जो इतना बड़ा कार्य कर रहा है, साक्षात हमारे आंखों के सामने वो दिखाई देना चाहिए। और इसीलिए आज चंद्रिका दीदी हमारे बीच में है। दीदी ने भी अपने बाल्यकाल से ही इस ज्ञान को प्राप्त किया और बाबा की, दादियों की विशेष पालना ली और इन चक्षु द्वारा भी उन्होंने हर सेकंड इस यज्ञ में जो घटित हुए घटनाएं, चाहे त्याग की बात हो, चाहे तपस्या की बात हो, चाहे सेवा की बात हो, इन आंखों से देखा भी है और खुद भी एक पिलर बनकर इस परमात्मा के कार्य में मददगार है। तो मैं आज अपने आप को भी बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि जो आज ऐसे विशेष रतन का मैं आप सबको एक परिचय कराने में निमित्त बन रहा हूं। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि दीदी ने ना केवल आपको निमंत्रण दिया है, लेकिन मैं दीदी को जानता हूं कि दीदी बाबा के टचिंग से, परमात्मा के टचिंग से इस यूथ विंग में नए नए प्लानिंग करते रहते हैं, सेवा के क्षेत्रों में नए नए क्रिएटिव करते रहते हैं, लेकिन विशेष अपने संकल्प शक्ति द्वारा, अपने वाइब्रेशंस द्वारा आप सबको भी यहां आने का निमंत्रण दिया है, आपका आह्वान किया है। तो ऐसे दीदी का भी इस प्रोग्राम में, इस सत्र में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप सभी भी अपने तीसरे नेत्रों को जागृत करते हुए हम दीदी से इस यज्ञ की हिस्ट्री सुनेंगे कि कैसे इस यज्ञ की स्थापना हुई, इस यज्ञ में क्या क्या समस्या आई, कैसे परमात्मा शक्ति द्वारा, निश्चय बुद्धि द्वारा उसको पार किया और समाज के लिए ये यज्ञ क्या क्या नई नई सेवाएं कर रहा है, कैसे कैसे उसकी कार्यशैली चल रही है। तो हम सभी सुनेंगे आदरणीय चंद्रिका दीदी से इस यज्ञ की हिस्ट्री। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। एक बात हमारे अति स्नेही आप भाई बहनों को मैं कहना चाहूंगी कि आपकी तरह जब हम शुरू शुरू में आया करते थे और आज भी हमें वरिष्ठ दादियां वरिष्ठ भाई उनके समीप रहना बहुत अच्छा लगता था और लगता है क्योंकि समीप से वो वाइब्रेशन मिलते हैं और हम हमेशा दृष्टि के उत्सुक रहे हैं दृष्टि लेने के क्योंकि ये दृष्टि में शक्ति रहती है। तो मेरे भाई बहनों को मैं विनती करती हूँ कि आप नजदीक आ जाओ हमेशा समीप का सुख लेते रहो जब आए ही हो तो जितना नजदीक बैठ सके। देखो ये हमारी मानसिक स्थिति होती है आगे बैठना माना हमारा ये इंटेंशन है कि हमें बहुत ध्यान से अटेंड करना है। आगे बैठना माना ये मानसिकता है कि हमें बहुत एकाग्रता से इस कार्यक्रम को अटेंड करना है। पीछे बैठना माना ये मानसिकता है कि देखते हैं जितना समय बैठा बैठेंगे फिर गुल्ले ऐसे ना तो पीछे से भागने की मानसिकता होती है। आप जो करो ने बड़े दिल के प्यार से करो समर्पण भाव से करो तो उसकी जो प्राप्ति है वो प्राप्ति अवर्णनीय होती है। इसलिए नजदीक आकर के बैठना हमेशा हर सत्र में आप पसंद करेंगे ऐसा आपसे अनुरोध है। अब हमारे भानु भाई जी ने बहुत सारी बातें बोल दी जो मुझे बोलने की थी लेकिन मुझे खुशी है कि यही आध्यात्मिकता है जो वाइब्रेशन को कैच करते हैं और वाइब्रेशन को टच करते हैं। मुझे बहुत गौरव है कि आज मैं ऐसे यज्ञ के बारे में आप सबको बताने वाली हूं जिस यज्ञ से एक नया युग एक नई दुनिया एक नई संस्कृति एक नया समाज बनने जा रहा है। और मैं एक ऐसे महामानव के बारे में आपको बात करने जा रही हूं जिनको सृष्टि का पहला मानव कहा आदि देव कहा आदम कहा ब्रह्मा पिता कहा ऐसे एक महापुरुष के बारे में मैं आप सभी को सुनाने वाली हूं। मुझे बहुत गौरव है अपने भाग्य पर। क्यों कि भगवान ने जिसको पसंद किया ईश्वर का जो माध्यम बना उस ब्रह्मा पिता को मैंने अपनी आंखों से देखा सन्मुख में मैंने आपको अपने कानों से सुना उनका हाथ पकड़कर मैंने उनके साथ पैदल किया उनके हाथों के द्वारा मैंने मुख में गिट्टी खाई उनके वरदानों से मेरी ये जीवन बने तो ये कितना बड़ा सौभाग्य इस जीवन में मुझे प्राप्त है। और इतने से न रुकूं और ये कहूं कि इनके अंदर आकर के भगवान ने छिप छिप करके या प्रत्यक्ष रूप में या साथ में रह करके जो काम किया, कराया, करा रहे हैं, उनकी मैं साक्षी हूं। यज्ञ शुरू होने के पहले हमें पिताश्री ब्रह्मा बाबा के जीवन के बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि स्वयं भगवान ने पहले ब्रह्मा पिता को सिलेक्ट किया। इतनी बड़ी दुनिया के परिवर्तन के लिए भगवान को एक मानव शरीर की जरूरत थी, क्योंकि भगवान को अपना शरीर नहीं होता है। भगवान जन्म और मृत्यु में नहीं आते हैं, भगवान कर्म और फल में नहीं आते हैं, भगवान मनुष्य की सदृश साइकिल में नहीं आते हैं। और इसीलिए परमात्मा एक है और आत्माएं अनेक हैं। परमात्मा पिता ने इस ब्रह्मा पिता को, महामानव को किस प्रकार सिलेक्ट किया, ये भी एक बहुत ही सुनने योग्य कथा है, कहानी है। ब्रह्मा पिता की पूर्व जीवन में वो एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में एक शिक्षक के घर में पैदा हुए थे। उनके पिताजी शिक्षक, बहुत छोटी आयु में, करीब 14 साल की आयु के आसपास ब्रह्मा बाबा, जिनका नाम लेखराज था, 14 साल की आयु के आसपास आपके लौकिक पिताजी ने देह त्याग कर दिया। तो लौकिक परिवार की जिम्मेवारी इनके कंधे पर आ गई, क्योंकि वही परिवार में बड़े थे। पढ़ना आदि छोड़ करके उनके चाचा ने अपनी दुकान पर बिठाया, और वो चाचा की दुकान थी करियाने की दुकान थी, अनाज की दुकान थी। अब ये दुकान पर बैठा तो सही, लेकिन ये बहुत दयालु था, उदार था और दानवीर वृत्ति का था। तो वो क्या करता था, किसी के पास पैसा नहीं तो उधार भी दे देते थे, कोई गरीब है तो ऐसे ही 500 किलो दे देते थे। तो उनके चाचा को मालूम चला कि ये तो दुकान पर बैठ करके ऐसे काम करता है, तो उनको दुकान से उठा दिया। और एक अपने मित्र जवेरी के वहां नौकरी पर लगाया। क्या नौकरी थी वहां, दुकान खोलना, झाड़ू लगाना, पानी भरना, ऐसे ऐसे काम करने के लिए उनको वहां रख दिया। अब ये बहुत इनकी नेकी थी, बहुत साफ दिल था, तो झवेरी के वहां तो झाड़ू लगावे तो झाड़ू में भी हीरे आएंगे ना। ये बड़ी ईमानदारी से सब कुछ काम किया करते थे। फिर वो हीरे को कट करते करते उसमें से जो छोटी छोटी कट पड़ती थी, तो वो कट भी वो उनको देते थे। तो वो उनका सेठ कहता था, ये तुम रख लो, तुमको जो करना है। तो उन्होंने उस कट से ऐसी ऐसी छोटी छोटी आइटम बनाई बड़ी सुंदर, और फिर अपने सेठ को दिखाया कि देखो देखो मैंने ये बनाया। तो उनके सेठ ने कहा तुम्हें उसका जो करना है करो। ऐसे करते करते उसकी कलाई बहुत बढ़ने लगी और ये हीरा की परख में बहुत आगे बढ़ गया। तो उनके दिल में आया कि अभी मैं अलग से अपना बिजनेस करूं। तो उसने अपने सेठ को कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं बिजनेस करूं अपना। तो उन्होंने कहा हाँ आप करो, हम सहयोग करेंगे। तो अपना अलग से बिजनेस शुरू किया। अब इस हीरे जवाहरात के बिजनेस में उनकी इतनी परख थी और उसकी बहुत जल्दी नामना बढ़ने लगी, तो उसके अंदर उसकी बहुत प्रगति हुई। तो एक तरफ बिजनेस पे प्रगति, दूसरी तरफ उनके अंदर भक्ति के संस्कार बहुत गहरे थे। उन्होंने 60 साल की उम्र तक 13 गुरु किए। उनके जीवन का ये सिद्धांत था कि एक सत्य से दूसरा कोई बड़ा सत्य मिलता है तो उसको ग्रहण कर लेने का। तो गुरु करते गए, प्राप्ति करते गए, आगे बढ़ते गए। उनके लास्ट के 2-3 गुरु के अनुभव सुनने योग्य है। तो एक बारी क्या किया कि वो सत्संग में थे, करीब 11वां या 12वां गुरु था, तो उनको गुरु के लिए भक्ति भाव भी बहुत था। वो गुरु को भगवान के स्थान पर मानते थे। तो एक बारी अपने घर में छठी का प्रसंग था, बेटे के बेटे की छठी का प्रसंग था, और गुरु का तार आया, लखीराज बाबू कम सुन। तो शाम को तो बेटे की छठी का प्रसंग था और सुबह तार आई है, तो अपनी पत्नी को कहा कि गाड़ी तैयार कराओ और मैं गुरु के बुलावे पर जा रहा हूं। उनकी पत्नी ने कहा कि ये प्रसंग पूरा करके फिर आप जा सकते हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया, बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। उन्होंने क्या जवाब दिया, उनकी पत्नी का नाम जशोदा था, कहा जशोदा अगर काल का बुलावा आता, मौत का बुलावा आता तो क्या तुम मुझे ये कह सकती थी? गुरु का पुकार माना काल का पुकार, गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा। हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि भगवान ने इनको क्यों पसंद किया। जिनके लिए गुरु काल का बुलावा है, उन्होंने भगवान को कैसे पहचाना होगा वो आगे सुनते हैं। फिर उन्होंने 12वें नंबर का गुरु किया था। उस गुरु के सत्संग में थे ही, और एक बार उनको दिव्य साक्षात्कार हुआ, और उस दिव्य साक्षात्कार के अंदर चार दृश्य देखे। पहला दृश्य देखा विष्णु चतुर्भुज को, और अंदर से देखा और आवाज सुनाई पड़ा, अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्वम, अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्व। दूसरा दृश्य देखा, आसमान से कोई सितारे उतर रहे हैं, कोई राजकुमार बनते हैं, कोई राजकुमारी बनती है, कोई महाराजा बन रहा है, कोई महारानी बन रही है और गोप गोपियां आ रहे हैं। पूरा एक स्वर्ग का दृश्य देखा। तीसरा दृश्य देखा महाविनाश, एटॉमिक वॉर, प्राकृतिक आपदाएं, सिविल वॉर, बहुत खून की नदियां बह रही हैं, आपसी युद्ध हो रहे हैं। ये सब देख करके ध्यान अवस्था में दादा लेखराज जी कहते हैं, भगवान बस करो बस करो, अब मैं नहीं देख सकता हूं, बस करो। इतना भयंकर महाविनाश देखा। और अंत में एक ज्योति बिंदु का साक्षात्कार हुआ और बाद में आवाज आया, लखीराज बाबू तुम्हें ऐसी स्वर्ग की दुनिया बनानी है, लखीराज बाबू तुम्हें ऐसी स्वर्ग की दुनिया बनानी है। तो ये चार साक्षात्कार जो उनको हुए, तो उनको मन में बहुत द्विधा हो रही थी कि मैंने ये क्या देखा और ये सब देखने के पीछे क्या रहस्य होगा और ये रहस्य मुझे कौन समझाए। तो उसी द्विधा को स्पष्ट करने हेतु वो अपने 12वें नंबर के गुरु के पास गए और गुरुजी से प्रश्न किया कि मैंने ये 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 जो दृश्य देखे तो इसके पीछे क्या रहस्य है। गुरुजी ने जवाब दिया, लखीराज बाबू लगता है तुम पागल हो गए हो। अब जब लखीराज जी ने ये जवाब सुना तो उन्होंने मन में हिसाब गिनती कर लिया कि ये गुरु का प्रभाव नहीं है, ये अनुभूति कोई और ईश्वरीय शक्ति ने मुझे कराया है। तो उस गुरु को भी छोड़ के 13वां नंबर का गुरु किया। अब वो गुरु का अपने घर में सत्संग चल रहा था और ये लेखराज बाबा जी का ये नियम था कि गुरु जी व्यासपीठ पर बैठे तब सामने बैठने का, और जब तक गुरुजी व्यासपीठ पर से उठे नहीं तब तक उठना नहीं है, ये उनका नियम था। अब ये जो 13वें नंबर के गुरुजी का सत्संग चल रहा था और बीच में से एकदम बाबा उठ के चले गए, लेखराज जी खड़े हुए और चले गए अपने कमरे की तरफ। जब वो उठ करके गए तो पीछे पीछे उनकी पत्नी और पुत्र वधू भी साथ साथ गए। यहां सत्संग चल रहा है, वहां बाबा अपने ध्यान के कमरे में जाकर बैठ गए हैं, बैठ गए और आंखें बंद हैं, अंतर्ध्यान हो गए हैं। उनके सामने उनकी पत्नी और पुत्र वधू जाकर के बैठे और वो देख रहे थे दादाजी को क्या हो रहा है। इतने में एक अलौकिक दृश्य देखा तो पूरा कमरा लाल प्रकाश से भरपूर हो गया और धीरे 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 वो पूरा प्रकाश दादा लेखराज जी के बदन में उतर गया। फिर जब दादा की आंखें खुली तो वो आंख में से एकदम शीतल प्रकाश और मुस्कुराता हुआ चेहरा और इतना दिव्य प्रतिभा संपन्न स्वरूप बाबा का बदला हुआ देखा। और बाबा भी आंखें खुली हैं और वो आसपास नजर घुमा के जैसे कोई अद्भुत तरीके से देख रहे हैं। और अंत में दादा लेखराज जी के शरीर को भी ऊपर से नीचे तक वो दिव्य प्रतिभा देख रही है। और उसके बाद मुख से आवाज निकला, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इस प्रकार ब्रह्मा पिता के मुख से, लेखराज जी के मुख से परमात्म वचन उच्चारण हुए। कुछ समय के बाद दादा की आंख बंद हो गई और जब वो अपने नेचुरल स्वरूप में आए तब वो बहुत ही आश्चर्यचकित थे, प्रश्नचित्त थे। सामने बैठे हुए अपने पत्नी और पुत्र वधू से पूछ रहे थे, मैंने ये क्या देखा, वो कौन थे, उन्होंने मुझे ये क्या आदेश किया, ये सब क्या हो रहा है। इस बात से ये स्पष्ट है कि पिताश्री ब्रह्मा दादा लेखराज एक आप और हमारी तरह एक सामान्य इंसान थे, गृहस्थ थे। पर जिस समय ये दृश्य है, परमात्मा ने इस महामानव के तन में प्रवेश कर लिया और उसके बाद जो एक एक घटनाएं घटती गई वो एक एक से बढ़कर आश्चर्य पैदा करने वाली भी है और सुख देने वाली भी रही, खुशी देने वाली भी रही। सबसे पहली बात ये हुई कि जब बाबा को ये विचित्र अनुभव हुआ उसके बाद बाबा एक मास कश्मीर चले गए अकेले और वहां पर एक कमरे में वो रह करके साधना किया करते थे। वहां से वो बीच बीच में अपने लौकिक परिवार को पत्र लिखते थे। तो उस पत्र में क्या लिखते थे मालूम है? पत्र में लिखते थे, यशोदा तुम आत्मा हो। उनके बेटे का नाम नारायण था, पत्नी का नाम यशोदा था और बच्चों के नाम आदि से लिखते थे, नारायण तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ, पुट्टू तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ, यशोदा तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ, हम सब ऊपर से आए हैं, हमको ऊपर जाना है, अब ये दुनिया का महाविनाश होना है, अब हमें वापस घर जाना है, ऐसे ऐसे पत्र में लिखा करती थी। तो जब इन्होंने देखा कि इस प्रकार के पत्र आ रहे हैं तो दादा लेखराज जी के लौकिक चाचा जब उनको मालूम चला तो वो गए कश्मीर और वहां से उनको समझा करके वापस लेकर के आए कि आप चलिए आप ऐसा मत कीजिए और अपने गृहस्थ को संभालना है, तो उनको वापस लेकर के आए। अब जब वापस आए तो इनका मन तो लग नहीं रहा है धंधे में। उन्होंने दो बात का फैसला किया। पहला ये फैसला किया वो अपने परिवार वालों से मिले और परिवार वालों को अपनी सारी अनुभूतियां शेयर की, पत्नी बेटे बहू बेटी दामाद पोत्रे तोत्रे सबको बिठा करके उन्होंने अपनी अनुभूति शेयर की कि मुझे क्या हो रहा है और भगवान हमारे से क्या कराना चाहता है और भगवान चाहता है ये भारत भूमि स्वर्ग बने और माताओं बहनों के द्वारा हमें ये कार्य करना है। अगर आप सभी मुझे साथ दो सहकार दो तो हम सभी मिल करके 5 माताओं के नाम ट्रस्ट बनाए, वहां ओम मंडली चलती थी उसी समय और जो माताएं बहनें धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी वो लोग आपस में सत्संग किया करते थे और उसी सत्संग में ये बाबा की लौकिक पत्नी और पुत्रवधू दोनों भी जाया करते थे तो उनको मालूम था। तो बाबा ने कहा ओम मंडली को हम अपना सब कुछ अर्पण कर दे और हम सेवक बन जाए। तो परिवार वालों ने उस बात को स्वीकार कर लिया, दादा आप जैसे कहो। आप सभी ध्यान से सुन रहे हैं ध्यान से एकदम, तो जरा हाथ उठाओ। तो अच्छा, तो अभी एक बात अंडरलाइन करना। आप देखो आप सभी यहां ऐसे ही नहीं आए हो, आपको भी भगवान ने अपने योग्य प्रिय भाग्यवान बच्चे समझ करके किसी न किसी को निमित्त बना करके यहां अपने घर में लाया है। ये बात आपको महसूस हो रही है कि स्वयं भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से अपने दिव्य प्यार से किसी न किसी को निमित्त बना करके इस पावन धरा पर लाया है, ऐसा जिनको महसूस हो रहा है वो हाथ उठाएं। धन्यवाद। तो अब मैं दूसरी बात ये कहना चाहती हूं, जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सिलेक्ट किया है वैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने आप सभी को सिलेक्ट किया है। आप भगवान की दिव्य शक्ति के द्वारा खींचे हुए आए हुए हो, इसलिए अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, फॉलो फादर। अपनी दिव्य अनुभूतियों पर चिंतन करना है जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। अच्छा, दूसरा ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, घर बार नहीं छोड़ना है। ये मत समझना कि हमको घर बार छोड़ना है, हमको सन्यासी बन जाना है, नहीं, ये तो यज्ञ बनना था, किसी को निमित्त बनना था और उसी परिवार को बलिदान देना था विश्व के लिए, तो ये घटना घटी। तो वो परिवार वाले तैयार हो गए कि भले हमारी स्थावर जंगम मिलकत मोटर गाड़ी बंगलो जो भी थे, उस जमाने में बाबा के 5 बंगलो थे, छह सात गाड़ियां थी, उस जमाने के लाखों पति थे बाबा, और समाज में उसका बड़ा सम्मान था। राजा महाराजाओं के घर में बहु बेटियों की जवाहरात बनाने के लिए उस समय तो बड़ा लाज मलाजा रहते थे, लेकिन बाबा को कहते थे राजे रजवाड़े लोग कि ये तो आपकी बेटियां हैं दादा। बाबा की पर्सनालिटी इतनी थी, इतनी रॉयल थी। मैं बाबा को 91 इयर्स की एज पर मिली हूं, तब भी बाबा के हाथ में लकड़ी नहीं थी, बाबा की आंखों में चश्मे नहीं थे, और माउंट आबू की हिल चढ़ते थे तो बाबा पहले पहुंच जाते थे। ऊपर पहुंच करके बाबा कहते थे आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे। आप कल्पना कीजिए 91 इयर्स की एज पर, और बाबा का हाथ अगर ऐसे ढक करके बाहर रखा हो तो कोई नहीं कह सकते ये कोई 91 इयर्स के बूढ़े का हाथ है। ऐसी ताजगी थी बाबा के जीवन में। क्यों? त्याग, पवित्रता, जीवन में सादगी, समर्पण भावना, बलिदान। दूसरा काम बाबा ने क्या किया? अपने पार्टनर को बुलाया, पार्टनर को कहा कि देखो ये तुम्हारे हीरे मुझे पत्थरे नजर आते हैं, पाना था सो पा लिया, मुझे अभी ये बिजनेस नहीं करना है, मेरे हिस्से में जो आता है वो मुझे दे दिया जाए। तो पार्टनर को हुआ कि बाबा शायद नाराज हो गए हैं। बोला आप हमारे से नाराज हुए? बोला नाराज नहीं, मुझे सारे राज मालूम हो गए, इसलिए मुझे देखना भी नहीं है, जो मेरे हिस्से में आता है मुझे दे दिए थे। और फिर बाद में बाबा ने यही जो कथा, एक साल 1936 में बाबा को ये सारी अनुभूतियां हुई, पूरे एक साल के पश्चात ये सारे प्रोसीजर को करते करते 1937 दिवाली के दिन पांच माताओं के नाम बिल बना करके और अर्पित किया, उसमें कोई भी अपना फैमिली मेंबर नहीं, नो फैमिली मेंबर, नो ब्लड कनेक्शन, और इस यज्ञ की स्थापना हुई दिवाली 1937। आप सभी वहां रहने लगे, ये बाबा तो कोई साधु महात्मा नहीं था, कोई संत गुरु नहीं था, गृहस्थी था। तो बाबा ने गीता पढ़ना शुरू किया, दादा लेखराज जी गीता पढ़ना शुरू किया। अब बाबा तो अपना घर में परिवार में जो होते थे गीता पढ़ते थे, लेकिन क्या हुआ, अभी यहां ईश्वरीय शक्ति का जादू, भगवान का मिरेकल जो कहा जाता है, तो पाकिस्तान में जो हिस्सा है कराची जिसको कहते सिंध हैदराबाद का, तो घर बैठे लोगों को साक्षात्कार होने लगा। ओम मंडली में चलो, लखी भवन चलो, लखीराज बाबा के पास चलो, लोग सोए हुए जाग करके भागते हैं, स्वर्ग आ रहा है, चलो भगवान से मिलने लिए चले, और लोग झुंड के झुंड भागे आ रहे हैं। सारे सिंध में आवाज फैल गया कि वो हीरे जवाहरात का व्यापारी दादा लेखराज जादूगर बन गया है, और वो सभी के पर जादू करने लगा है, और उसको 16,108 पटराणियों की जरूरत है। लोग भागे आ रहे हैं, अब बाबा तो बस वो गीता पढ़ रहे हैं, हजार आए, 2,000 आए, 5,000 आए। बाबा का स्थान तो बहुत बड़ा था, अब बाबा समझो गीता पढ़ रहे हैं और समझो ऐसे पढ़ते पढ़ते नजर जिसके पर गई वो ध्यान में, जिसके पर नजर पड़ी ध्यान में, जिसके पर नजर पड़ी ध्यान में। लोग सुनते सुनते ध्यान में जा रहे हैं, ध्यान में कोई कृष्ण को देख रहे हैं, कोई विष्णु को देख रहे हैं, कोई स्वर्ग को देख रहे हैं और डांस करने लगे। अब तो सभी नाच करते हैं, डांस करते, खुशी में अनुभव करते, स्वर्ग के दृश्य देखते, तो बात तो मिनटों में फैल जाती है। तो सारे सिंध में फैल गया आवाज कि मुफ्त में पैसा, चलो मुफ्त में भगवान, चलो भगवान के पास, मुफ्त में भगवान, चलो भगवान के पास। लोग आते गए, साक्षात्कार होते गए, खुशी होती गई। तो शुरू शुरू में कुछ दिन तो ये चलता गया, फिर परमात्मा ने, परमात्मा शक्ति ने ब्रह्मा पिता के मुख के द्वारा वो जो गीता थी ना, वो गीता हाथ से एक बारी गिर गई नीचे, बस वो गिर गई, वो गिर गई। उसके बाद कभी बाबा के हाथ में गीता बाबा ने नहीं उठाई। शिव बाबा, ज्योति बिंदु बाबा, ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा रहस्य खोलने लगे। पहला रहस्य क्या खोला? पहला रहस्य ये खोला कि देखो वत्स, अभी ये पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इसी भारत भूमि को स्वर्ग बनना है और इसीलिए तुम्हें मानव से देव बनना है, नर से नारायण बनना है, और इसीलिए अभी तुम्हें ये पांच विकारों को छोड़ना है। पहला प्रकाश कहो, पहली रोशनी कहो, परमात्मा ने ये दी कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जितने भी विकार हैं और उसके बाल बच्चे हैं, इस सब को तुम्हें छोड़ना है। अगर तुम्हें यहाँ सत्संग सुनने आना हो, बाबा ने चार कंडीशन की कि ये सत्संग सुनने वही आ सकते हैं। नंबर वन, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांच विकारों का त्याग करे, जो बीड़ी, सिगरेट, तमाकू, ड्रिंक्स आदि व्यसनों का त्याग करे, जो पवित्र जीवन व्यतीत करे और जो नित्य प्रति और जो शुद्ध भोजन ग्रहण करे, मीट, मटर, प्याज, लहसुन आदि कुछ भी नहीं खाना है, जो इन चार नियमों को पालन कर सकते हैं वो अपने माता पिता से या अपने पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल से, जो भी अपने रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके द्वारा ये चिट्ठी लिखा के आवे कि मेरा बेटा या बेटी या पत्नी या इस सत्संग में जा रहे हैं और अभी इस सत्संग में हम खुशी से छुट्टी दे रहे हैं और इस सत्संग में जाने लिए व्यसन विकारों का दान दे रहे हैं, ऐसे सभी से पत्र लिखवाए। अब आप समझ सकते हैं कि हजारों में से कितने हो गए होंगे, कितने हुए होंगे, कितने हुए होंगे, गिनती के रह गए करीब 350-450 जितने रहे, जो चिट्ठी लेके आए, जिन्होंने ये स्वीकार किया कि हम ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे और भारत देश को स्वर्ग बनाने में हम अपना सहयोग करेंगे। वहां से ये यज्ञ की स्थापना शुरू हुई। 1951 तक ये यज्ञ कराची में ही रहा। आपको मालूम है कि 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध हुआ और उस समय पाकिस्तान में से लोगों को कुएं में मार डालते थे, उनका खून कर लेते थे, मतलब बहुत खराब समय वो गया था। ऐसे समय पर ये अपना विश्वविद्यालय वहां ही था। 1947 से 51 तक वहां रहा, लेकिन परमात्मा शक्ति की किसी का बाल तक बांका नहीं हुआ। वहां वाले लोगों को भी ऐसा साक्षात्कार होता था कि ये तो खुदा के बंदे हैं, ये खुदा दोस्त हैं, इनके रहने से तुम्हारी रक्षा होगी, इसलिए तुम्हें इनको कुछ भी कष्ट नहीं देना है, ऐसे उनको साक्षात्कार होता था। तो वो लोग सामने से आकर के कहते थे कि आप भारत नहीं जाना, आपको हम सब सुविधा देंगे। तो क्योंकि 400 जितने लोग रहते थे, तो ट्रक भर के साग भाजी, ट्रक भर के दूध, रेशन, जो भी चाहिए वो दे जाते थे सामने से कि आप तो खुदा के बंदे हैं, हम आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। फिर 1951 में ये हमारा सारी एक्टिविटी यहाँ माउंट आबू में आए। माउंट आबू में किराए के मकान रख करके एक दो स्थान परिवर्तन करके, फिर बाद में अपना जो पांडव भवन है, जब आप विजिट पर जाएंगे तब देखेंगे, वहाँ पांडव भवन में अपना केंद्र स्थापन हुआ। अब उस समय तो गिनती के कहा ने 350-400 भाई बहने थे और केवल यहाँ ही एक्टिविटी थी, लेकिन आज इस यज्ञ को 80वां वर्ष चल रहा है। हमारे जैसी करीब 25,000 बहने हैं जिन्होंने अपना जीवन इसी में समर्पित किया है, 5,000 जितने भाई हैं जिन्होंने जीवन समर्पित किया है, और पूरे भारत और विश्व में 9,500 केंद्र हैं। और वैसे जो कंप्लीट धारणाओं पर चलते हैं, ऐसे करीब 10,00,000 जितने भाई बहने हैं जो भले अपनी फैमिली लाइफ में रहते हैं, लेकिन उनका जीवन ऐसा ही जीवन है जैसे हम समर्पित ब्रह्मा कुमार भाई बहने सारे नियम पर चलते हैं। और आज विदेश में भी करीब 140 देशों के अंदर अपनी ये एक्टिविटीज चलती हैं। और केवल इतना ही नहीं, लेकिन हमारे 19 प्रभाग हैं, जैसे ये यूथ विंग है, उसी प्रकार मेडिकल विंग, जुरिस्ट विंग, पॉलिटिशियन विंग, विमेन विंग आदि आदि 18 विंग हैं जिनके द्वारा ये ईश्वरीय कार्य संपन्न होता जा रहा है। तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखते हुए हम सभी ब्रह्मा बाबा के मुख के ये ज्ञान से पैदा हो रहे हैं। तो हम सभी कौन हैं? हम सभी कौन हैं? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। जो ब्रह्मा के बच्चे, जैसे राजा का बेटा होता है उसको राजकुमार या राजकुमारी कहते हैं, तो हम जो ब्रह्मा के बच्चे थे हैं, वो है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। अभी आप लोग अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहेंगे, जो कहते हाँ हम ब्रह्मा कुमार हैं, हम ब्रह्मा कुमारी हैं, वो हाथ उठाएं। वाह, सभी पास हो गए, हम सब एक परिवार के हैं, ब्रह्मा पिता के बच्चे हैं। सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा को भगवान ने पसंद किया और ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हम सभी को पसंद किया। तो आप सभी को इस नए मुख कमल से प्राप्त किए जन्म की, ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। अब मैं दो बातें कहना चाहती। एक तो कल सुबह 4:15 का मेडिटेशन है, उस मेडिटेशन में आप सभी अवश्य पधारेंगे। कल हमें तीन बातें अमृत वेले सीखनी है। मैं कौन, हमारी अंदर की जो दिव्यता है उसे अनुभव करनी है, और भगवान से मेरे नाते रिश्ते कैसे हैं, और संकल्पों को रचने की कला क्या है। तो आप सभी कल अवश्य ही पधारे, रात्रि को सोते समय ये संकल्प करें। और दूसरी बात, हर सेशन में आप सेशन से 5 मिनट पूर्व आया करो। केवल सेशन की बात नहीं, जीवन के हर कर्म में अगर आप 5 मिनट एडवांस में रेडी होके चलेंगे तो आप बहुत सफल हो पाएंगे। ये समय की सूचकता, समय की शक्ति, समय पर अलर्ट रहना, ये जीवन को सफल करने के लिए एक बहुत बड़ी मास्टर की है। तो इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए आपका हमें ये सहयोग चाहिए। ओम शांति। अभी हाँ, कोई बात।
ओम शांति। हम सभी ने दीदी के द्वारा ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनी, और मैं समझता हूं कि हम सभी ने उसको ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव किया कि जैसे सारी घटनाएं है, क्या अनुभव किया कि हमारे सामने घटित हो रही है। तो हम सभी ने ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री सुनी, यज्ञ की हिस्ट्री सुनी, तो हम सभी यही प्रेरणा इससे लेंगे कि हम सभी को भी, भले हम जिस भी क्षेत्र में हैं, जितने भी पढ़े लिखे हो या साधारण हो, लेकिन अगर अपने आप को विश्व सेवा में, परमात्मा की सेवा में समर्पण करते हैं तो हमारे द्वारा परमात्मा कार्य कराता है। और जैसे दीदी ने हम सबको कहा कि स्वयं परमात्मा ने हम सबको चुना हुआ है, तो आज से ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी से हम सभी ये संकल्प अपने जीवन के अंदर लेंगे कि हम कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं है। हम कौन है कि परमात्मा द्वारा चुने हुए विशेष आत्मा है, विशेष रतन है। अगर ये संकल्प भी हमारे स्मृति में सदा रहे तो हमारा जीवन बहुत सफल हो सकता है। और जैसे ब्रह्मा बाबा ने इस भारत को त्याग द्वारा, तपस्या द्वारा और सेवा द्वारा स्वर्ग बनाने के लिए प्रेरणाएं दी, परमात्मा ने उनके द्वारा ये कार्य कराया, तो आज इस कहानी को सुनकर हम भी अपने जीवन में संकल्प ले कि भले जैसे दीदी ने कहा कि कुछ छोड़ना नहीं है, घर गृहस्थ में रहना है, सब जिम्मेदारियां संभालनी है, सर्व संबंध निभाने हैं, लेकिन उसमें रहते हुए भी अपने त्याग, तपस्या और सेवा भावना द्वारा भारत को, जो हमारा लक्ष्य है, स्वच्छ, स्वस्थ और स्वर्णिम बनाना। और इसमें हम अकेले नहीं है, हमारे साथ कौन है, कौन है, हम सबको निमित्त बनाने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान है। तो आज हम ये दो संकल्प लेंगे कि हम विशेष रतन हैं और हम, हमारे साथ परमात्मा है, और परमात्मा के साथ द्वारा हम अपने त्याग तपस्या द्वारा इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। तो दीदी ने हम सबको ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री सुना के, यज्ञ हिस्ट्री सुना के, ब्रह्मा बाबा का भी साक्षात्कार कराया है, और अंदर से हम सभी को बहुत ही प्रेरणाएं दी है। तो मैं दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। एक हाथ की ताली, साइलेंस की एक हाथ की ताली बजाकर दीदी का धन्यवाद करेंगे।
जितना कहे उतना है कम, ब्रह्मा बाबा का कथन। आबू को तीर्थ बनाया, जहाँ होता प्रभु मिलन। जितना कहे उतना है कम, ब्रह्मा बाबा का कथन। जितना कहे उतना है कम, ब्रह्मा बाबा का कथन।
कथन जितना कहे उतना है।